एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में।
ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम 20वीं सदी के साहित्य के एक ऐसे स्तंभ की बात कर रहे हैं जिनकी कलम जितनी ताकतवर थी उतनी ही उनकी शख्सियत भी। अर्नेस्ट हेमिंग्वे, एक ऐसा नाम जिसके इर्द गिर्द कहानियां, विवाद और हाँ, एक बिल्कुल अनूठी साहित्यिक शैली घूमती है।
बिल्कुल, हेमिंग्वे सिर्फ पन्नों पर नहीं जिए, उन्होंने उन्होंने जिंदगी को भी एक बड़े कैनवस की तरह देखा और जिया। उनकी वो सीधी सधी हुई, एकदम काट छाट वाली लेखन शैली, उसने अमेरिकी गद्य की दिशा ही बदल दी।
आज हम स्रोतों के आईने में यही देखने की कोशिश करेंगे कि उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उनके विचारों और उनकी विरासत के असली मायने क्या हैं। क्या वो वाकई एक साहित्यिक क्रांतिकारी थे या फिर
या एक गड़ा हुआ मिथक?
हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। तो चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले वो जमीन, वो माहौल समझते हैं जिसमें हेमिंग्वे पले बढ़े। जन्म 1899 में। अमेरिका उस वक्त एक नए आत्मविश्वास में जी रहा था, है ना?
जी हाँ, गिल्डेड एज का दौर था वो। स्पेनी अमेरिकी युद्ध जीत चुके थे, नई नई तकनीकें आ रही थीं, ऑटोमोबाइल, सिनेमा, जीवन बदल रहा था। विक्टोरियन मान्यताएं थीं, पर कहीं ना कहीं आधुनिकता की सुखबुकाहट भी शुरू हो गई थी।
और साहित्य की दुनिया में वहां क्या चल रहा था?
वहां भी उथल पुथल थी। देखिए, आधुनिकतावाद यानी मॉडर्निज्म का दौर शुरू हो रहा था। जेम्स जॉयस, टीएस एलियट जैसे लेखक थे जो भाषा, फॉर्म, सबसे पुराने ढर्रों को तोड़ रहे थे। फिर आया पहला विश्वयुद्ध, उसने तो जैसे 19वीं सदी के तरक्की और अच्छाई के सारे विश्वासों को चकनाचूर कर दिया। एक मोहभंग का, एक डिसिल्यूजनमेंट का माहौल था जिसने कला पर बहुत गहरा असर डाला।
और इसी माहौल से निकली वो खोई हुई पीढ़ी है ना, लॉस्ट जेनरेशन, जिसका जिक्र गर्ट्रूड स्टीन ने किया। मतलब वो युवा जो युद्ध की भयावहता देखकर नैतिक रूप से कहीं खो गए थे।
बिल्कुल, और हेमिंग्वे पारस में इसी पीढ़ी के बीच थे। एफ स्कॉट फिट्ज़गेरल्ड, एज़रा पाउंड जैसे लेखक साथी थे। वो एक ऐसा माहौल था जहां पुराने मूल्य टूट रहे थे और हर कोई किसी नई चीज की तलाश में था, किसी नए अर्थ की।
और साथ ही आपने कहा रेडियो, सिनेमा जैसे मास मीडिया भी आ रहे थे।
हाँ, और वो सेलिब्रिटी और संस्कृति की नई परिभाषाएं बना रहे थे। तो इन सब ने मिलकर एक तरह से हेमिंग्वे के लिए मंच तैयार किया। उनकी वो छोटी सीधी शैली, उनके विषय युद्ध, प्रेम, मृत्यु, प्रामाणिकता की तलाश, ये सब उसी माहौल की देन थे। वो माहौल उनकी कला को गढ़ रहा था और वो अपनी कला से उस माहौल पर असर डाल रहे थे।
चलिए अब थोड़ा उनके शुरुआती जीवन की तरफ चलते हैं। ओक पार्क, इलिनॉय में जन्म। पिता डॉक्टर थे और उन्होंने ही शिकार और मछली पकड़ना सिखाया। वो मिशिगन की झीलें उनकी कहानियों में बार बार आती हैं।
हाँ, वैलून झील की गर्मियां, और माँ संगीत शिक्षिका थीं। उनका जोर कला और संस्कृति पर था। एक दिलचस्प बात स्रोतों में मिलती है कि माँ बचपन में उन्हें और उनकी बहन को कभी कभी एक जैसे, मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनाती थीं।
अच्छा, तो क्या लगता है आपको इस अनुभव ने बाद में जो उनका एक पुरुषत्व या मैस्कुलिनिटी पर इतना जोर रहा, उसे किसी तरह प्रभावित किया होगा?
देखिए, ये कहना तो बहुत मुश्किल है, सीधा संबंध जोड़ना शायद ठीक ना हो, पर हाँ, मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो बचपन के अनुभव अक्सर बाद की जीवन की जटिलताओं में कहीं ना कहीं कोई भूमिका निभा जाते हैं। खैर, स्कूल में वो लिखने और खेलने दोनों में आगे थे, एथलीट भी, लेखक भी। कॉलेज नहीं गए बल्कि सीधे कांसास सिटी स्टार अखबार में रिपोर्टर बन गए, और यहीं उनकी शैली की पहली ईंट रखी गई।
अखबार की स्टाइल गाइड ने मदद की।
बिल्कुल, स्टाइल गाइड कहती थी छोटे वाक्य लिखो, सक्रिय क्रिया इस्तेमाल करो, सीधी बात कहो, कोई फालतू शब्द नहीं। यही उनकी पहचान बन गया आगे चलकर।
और फिर आया वो बड़ा मोड़, पहला विश्वयुद्ध, इटली में रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर।
हाँ, और वो अनुभव निर्णायक था। फोसाल्टा के पास ऑस्ट्रियाई मोर्टार हमले में वो बुरी तरह घायल हुए, दोनों पैरों में छर्रे लगे। ये सिर्फ शारीरिक चोट नहीं थी, ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक आघात भी था।
और उसी दौरान अस्पताल में नर्स एग्नेस वॉन कुरोस्की से प्रेम, और फिर उनका इंकार। कहते हैं ए फेयरवेल टू आर्म्स की प्रेरणा वहीं से मिली।
जी, ऐसा माना जाता है। युद्ध नायक बनकर लौटे तो सही, पर अंदर से वो हिल चुके थे। जिसे आज हम PTSD कहते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, उसके लक्षण उनमें साफ दिखते थे। सामान्य जीवन में ढलना आसान नहीं था उनके लिए। युद्ध के ये सारे अनुभव, ये चोटें, ये दिल टूटना, ये सब बार बार उनके लेखन में उभर कर आता है। आखिरकार अपनी पहली पत्नी हेडली रिचर्डसन के साथ पेरिस चले गए और वहां से एक नया साहित्यिक सफर शुरू हुआ।
तो युद्ध के अनुभवों ने न सिर्फ उन्हें विषय दिए बल्कि उनके लिखने के अंदाज को भी तराशा, और यहीं से उनके सबसे मशहूर साहित्यिक सिद्धांत निकले, जैसे कि हिमशैल सिद्धांत, आइसबर्ग थ्योरी। ये क्या था?
हाँ, ये हेमिंग्वे का शायद सबसे बड़ा योगदान माना जाता है साहित्य को। सिद्धांत सुनने में बड़ा आसान है, कहानी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिखाओ, जैसे पानी पर तैरता हुआ बर्फ का पहाड़, आइसबर्ग, मान लीजिए 8 में से सिर्फ एक हिस्सा,
और बाकी 7 हिस्से
वो पानी के नीचे छिपे रहने दो, पाठक उन्हें महसूस करे, समझे, अंदाजा लगाए। इसके लिए क्या करना है? कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करो, जानबूझकर कुछ चीजें बताओ ही मत, स्ट्रेटेजिक ओमिशन, और ठोस चीजों का वर्णन करो जिससे भावनाएं अपने आप जागें। कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा भावनात्मक असर पैदा करना, ये लक्ष्य था।
लेकिन जब आप कहते हैं कि 7 हिस्से छिपे रहने दो, तो क्या पाठक पर बहुत ज्यादा बोझ नहीं आ जाता? मतलब कहीं कहानी अस्पष्ट तो नहीं हो जाती?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इस पर बहस भी खूब हुई है। देखिए, हेमिंग्वे की यही तो ताकत थी, वो पाठक को आलसी नहीं रहने देते थे, उसे सक्रिय बनाते थे। जो कहा नहीं गया, यानी सबटेक्स्ट, वो अक्सर कही गई बात से ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। जैसे उनकी एक कहानी है हिल्स लाइक व्हाइट एलिफेंट्स, उसमें गर्भपात शब्द एक बार भी नहीं आता, लेकिन किरदारों के बीच का तनाव, उनकी अनकही बातें, इशारे, वही कहानी का असली वजन है। हाँ, ये जरूर है कि अगर लेखक कुशल न हो तो ये तकनीक कहानी को उलझा सकती है, अस्पष्ट बना सकती है, लेकिन हेमिंग्वे इसमें माहिर थे। खासकर जब उन्हें आघात या दबी हुई भावनाओं को दिखाना होता था, तब ये तकनीक कमाल का काम करती थी।
अच्छा, और दूसरा बड़ा विचार है हेमिंग्वे कोड, ये क्या है? क्या ये कोई जीने का फलसफा था?
हाँ, एक तरह से कह सकती हैं, ये एक धर्मनिरपेक्ष मतलब दुनियावी नैतिक संहिता, मॉरल कोड है। हेमिंग्वे के किरदारों की दुनिया अक्सर उदासीन होती है, ईश्वर शायद चुप है या है ही नहीं, तो ऐसे में इंसान के पास क्या बचता है? उनके नायकों के पास बचती है व्यक्तिगत ईमानदारी, शारीरिक साहस, और सबसे बढ़कर दबाव में गरिमा, ग्रेस अंडर प्रेशर, यानी मुश्किल से मुश्किल हालात में भी अपनी शान, अपनी गरिमा बनाए रखना। वो पारंपरिक सांत्वनाओं को, झूठी उम्मीदों को अक्सर नकार देते हैं।
यानी दुनिया भले ही बेमानी लगे, लेकिन आप उस बेमानी दुनिया में जीते कैसे हैं, चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं, ये चीज मायने रखती है।
बिल्कुल, और इसी से जुड़ा है शिल्प का महत्व, क्राफ्ट्समैनशिप का। चाहे वो लिखना हो, या मछली पकड़ना, या बुल फाइटिंग हो, या फिर युद्ध लड़ना, किसी काम को पूरी कुशलता, पूरे समर्पण और अनुशासन से करना, यही इस बेमानी दुनिया में अर्थ भरने का एक तरीका है। और ये जो दबाव में गरिमा का विचार है, ये सिर्फ हेमिंग्वे के किरदारों तक ही नहीं रहा, ये 20वीं सदी के अमेरिकी साहित्य का, बल्कि अमेरिकी संस्कृति का ही एक केंद्रीय विचार बन गया।
चलिए, अब जरा उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर आते हैं जिन्होंने इन विचारों को शक्ल दी। इन अ टाइम से शुरू करें, उनकी शुरुआती कहानियों का संग्रह।
जी, इसमें निक एडम्स नाम का किरदार है, जो काफी हद तक हेमिंग्वे का अपना ही अक्स माना जाता है। इन कहानियों में युद्ध के बाद का मनोवैज्ञानिक असर, मासूमियत का खोना, ये सब विषय थे। खास बात ये थी कि इसमें कहानियों के बीच बीच में युद्ध के छोटे छोटे, बहुत तीखे रेखाचित्र, विग्नेट्स भी थे, जो पत्रकारिता शैली में लिखे गए थे, और यहीं से हिमशैल सिद्धांत का असर साफ दिखने लगा था।
फिर आया द सन ऑल्सो राइजेस, जिसे कई लोग खोई हुई पीढ़ी का घोषणा पत्र जैसा मानते हैं। पेरिस और स्पेन में भटकते हुए अमेरिकी और ब्रिटिश प्रवासी।
हाँ, और उसका कथावाचक जेक बांस, जो युद्ध में लगी चोट के कारण नपुंसक है, वो जैसे उस पूरी पीढ़ी की आध्यात्मिक और भावनात्मक खालीपन का प्रतीक बन जाता है। लेडी ब्रेट एशले के साथ उसका वो असंभव सा प्रेम संबंध, उनकी इच्छाएं, उनका भटकना, और स्पेन की बुल फाइटिंग, हेमिंग्वे के लिए वो सिर्फ एक तमाशा नहीं था, वो मौत से आमने सामने होने और उसी दबाव में गरिमा दिखाने का एक क्रूर अनुष्ठानिक तरीका था। ये उपन्यास उस पीढ़ी के मोहभंग को बहुत शिद्दत से पकड़ता है।
और ए फेयरवेल टू आर्म्स, अ फेयरवेल टू आर्म्स, इसे कई लोग उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते हैं, ऐसा क्यों?
शायद इसलिए कि इसमें युद्ध और प्रेम का जो संतुलन है वो अद्भुत है। पहले विश्व युद्ध के इटली में एक अमेरिकी एम्बुलेंस ड्राइवर और एक ब्रिटिश नर्स की प्रेम कहानी युद्ध का बेहद यथार्थवादी चित्रण है, ना कोई महिमा मंडल, ना कोई कोरी निंदा। उपन्यास ये दिखाता है कि कैसे युद्ध बड़े बड़े आदर्शों को, जैसे सम्मान, गौरव, देशभक्ति, इन सबको खोखला कर देता है, और अंत में शायद सिर्फ व्यक्तिगत रिश्ते ही हैं, जो कुछ मायने रखते हैं। लेकिन फिर अंत में प्रेम भी मौत और युद्ध की क्रूरता के सामने असहाय नजर आता है। इसी में वो प्रसिद्ध पंक्ति है, दुनिया हर किसी को तोड़ देती है और बाद में कई लोग टूटी हुई जगहों पर मजबूत हो जाते हैं। ये उनके दर्शन का एक अहम हिस्सा है, आघात और उससे उभरने की क्षमता, रेजिलियंस।
फिर कुछ साल बाद स्पैनिश गृह युद्ध की पृष्ठभूमि पर आया फॉर हूम द बेल टोल्स। इसमें क्या कुछ अलग था पिछले उपन्यासों से?
हाँ, इसमें हेमिंग्वे का फोकस थोड़ा बदला हुआ लगता है। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव से ज्यादा जोर सामूहिक कार्रवाई और राजनीतिक प्रतिबद्धता पर है। नायक एक अमेरिकी है, रॉबर्ट जॉर्डन, जो स्पेन में रिपब्लिकन गोरिलाओं के साथ है, एक बड़े मकसद के लिए लड़ रहा है। जॉर्डन की कविता से लिया गया शीर्षक और उसकी थीम, कोई भी मनुष्य एक द्वीप नहीं है, वो इसी जुड़ाव को, इसी सामूहिकता को दिखाता है। हालांकि यहां भी प्रेम कहानी है मारिया के साथ और व्यक्तिगत बलिदान का द्वंद्व भी है, लेकिन हाँ, दायरा थोड़ा बड़ा है।
और फिर काफी समय बाद 1952 में आया द ओल्ड मैन इन द सी, एक छोटी सी किताब, लेकिन इसने उन्हें पुलित्जर दिलाया और फिर नोबेल भी।
जी हाँ, ये एक तरह से उनकी शैली की जड़ों की ओर वापसी थी। भाषा में एक शास्त्रीय सरलता है, कहानी बहुत सीधी है। एक बूढ़ा क्यूबाई मछुआरा सैंटियागो और उसका एक विशाल मार्लिन मछली के साथ संघर्ष, लेकिन यह कहानी एक रूपक की तरह पढ़ी जाती है। इंसान का प्रकृति से या भाग्य से संघर्ष, हार न मानने का जज्बा। अंत में भले ही सैंटियागो मछली को खो देता है, शार्क उसे खा जाती हैं, लेकिन वो हारा नहीं है।
एक आदमी नष्ट हो सकता है लेकिन पराजित नहीं।
बिल्कुल, यही उस कहानी का सार है। ये मानवीय गरिमा और धीरज का उत्सव है, भले ही नतीजा कुछ भी हो। यह किताब बहुत लोकप्रिय हुई और इसने उनके नोबेल पुरस्कार में भी अहम भूमिका निभाई।
तो इन पुरस्कारों ने, खासकर नोबेल ने, निश्चित रूप से साहित्य के इतिहास में उनकी जगह पक्की कर दी।
हाँ बिल्कुल, 1953 में पुलित्जर मिला द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए, और फिर 1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, खासकर तब जब उनके कुछ पिछले कामों की, जैसे अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज की, काफी आलोचना हुई थी। नोबेल समिति ने उनकी कथा कला में महारत और समकालीन शैली पर उनके प्रभाव को पहचाना। एक दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त वो अफ्रीका में दो विमान दुर्घटनाओं में बुरी तरह घायल हो गए थे, तो वो खुद स्टॉकहोम पुरस्कार लेने नहीं जा सके। हाँ, उनका स्वीकृति भाषण अमेरिकी राजदूत ने पढ़ा था और उसमें लेखक के अकेलेपन और कला के प्रति उसकी ईमानदारी पर जोर दिया गया था।
तो अगर हम संक्षेप में उनके साहित्यिक योगदान को देखें तो मुख्य बातें क्या होंगी? मतलब हेमिंग्वे ने साहित्य को क्या दिया?
देखिए, सबसे पहली और सबसे अहम चीज तो उनकी क्रांतिकारी गद्य शैली है, वो हिमशैल सिद्धांत, कम शब्दों में ज्यादा कहना, भाषा की मितव्ययता, वस्तुनिष्ठता, उपपाठ का इस्तेमाल। इसने अमेरिकी और सिर्फ अमेरिकी क्यों, दुनिया भर के गद्य लेखन का अंदाज बदल दिया।
दूसरा
वो हेमिंग्वे कोड वाले नायक का विचार, वो किरदार जो बाहरी दुनिया की उदासीनता या क्रूरता के सामने अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी और गरिमा बनाए रखता है, खासकर दबाव के क्षणों में। तीसरा, युद्ध का मनोवैज्ञानिक चित्रण। उन्होंने युद्ध को सिर्फ घटनाओं के ब्यौरे की तरह नहीं दिखाया, बल्कि इंसान के मन पर, उसकी आत्मा पर पड़ने वाले असर को दिखाया। आघात, ट्रॉमा, मोहभंग, इन सबको उन्होंने अपनी कहानियों में उतारा।
और चौथा, उनका व्यापक अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। उनके काम का अनुवाद हुआ, दुनिया भर के लेखकों ने उनकी तकनीकों को अपनाया।
लेकिन उनकी विरासत, जैसा आपने शुरू में कहा, सीधी साधी नहीं है। जीवन काल में भी आलोचना हुई और बाद में तो और भी ज्यादा।
हाँ, ये सच है। उनके निधन के बाद, खासकर 1970 और 80 के दशक में, नारीवादी आलोचना, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म ने उनके लेखन पर गंभीर सवाल उठाए। उनके किरदारों में महिलाओं का चित्रण अक्सर सीमित या स्टीरियोटाइप वाला माना गया, और पुरुषत्व, मैस्कुलिनिटी के महिमामंडन की भी आलोचना हुई। इससे उनकी अकादमिक प्रतिष्ठा को कुछ धक्का लगा, लेकिन फिर नजरिया बदला भी।
बाद में ट्रॉमा स्टडीज जैसे नए अकादमिक क्षेत्रों ने उनके काम को फिर से देखा। उन्होंने पाया कि हेमिंग्वे अपने समय से बहुत आगे थे, मनोवैज्ञानिक चोट और युद्ध के बाद के विस्थापन को समझने और चित्रित करने में। अब कई लोग उन्हें PTSD जैसी स्थितियों को साहित्य में लाने वाले शुरुआती लेखकों में गिनते हैं।
और उनकी शैली का असर क्या वो आज भी महसूस किया जाता है?
अरे बिल्कुल, रेमंड कार्वर जैसे लघु कथाकार हों या गैब्रियल गार्सिया मार्केस जैसे विश्व प्रसिद्ध उपन्यासकार, कई बड़े लेखकों ने हेमिंग्वे के प्रभाव को स्वीकारा है। उनकी वो सीधी, सटीक, कम अलंकृत शैली का असर तो आज भी क्राइम फिक्शन से लेकर साहित्यिक पत्रकारिता तक में देखा जा सकता है। और वो हेमिंग्वे हीरो का जो एक बिंब बना, वो अच्छा हो या बुरा, पसंद आए या ना आए, पर वो हमारी संस्कृति का, फिल्मों का, साहित्य का हिस्सा बन गया है।
उनके जीवन से जुड़ी कुछ और दिलचस्प बातें भी हैं, जैसे आपने उन दो विमान दुर्घटनाओं का जिक्र किया।
हाँ, 1954 में अफ्रीका में वो दो अलग अलग विमान दुर्घटनाओं में बच गए थे, एक के बाद एक, लेकिन बहुत गंभीर रूप से घायल हुए। कहा जाता है कि इन चोटों ने उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत गहरा और स्थायी असर डाला।
उनकी जो एक सार्वजनिक छवि थी, बड़ा शिकारी, मछुआरा, युद्ध संवाददाता, एकदम मर्दाना, उसके पीछे असल में एक जूझता हुआ इंसान भी था।
बिल्कुल, अवसाद, डिप्रेशन, व्यामोह, पैरानोया, शराब की लत, इन सब समस्याओं से वो जूझ रहे थे। उन्होंने मिनेसोटा के मेयो क्लिनिक में इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT तक करवाई थी,
और अंततः 1961 में इडाहो में अपने घर पर उन्होंने आत्महत्या कर ली।
जी, ये उनकी कहानी का एक दुखद अंत था, और ये उनकी शख्सियत की जटिलता को और गहरा करता है। इतनी बाहरी सफलता, इतनी शोहरत, वो माचो छवि, और उसके पीछे इतना गहरा अंदरूनी संघर्ष, ये हमें उस मिथक के पीछे के इंसान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
उनकी किताबों पर फिल्में भी तो बनी, क्या वो फिल्में उनकी किताबों की गहराई पकड़ पाई?
ये हमेशा एक मुश्किल काम रहा है। देखिए, हेमिंग्वे की शैली की जान उसकी सादगी, उसके उपपाठ, उसकी मितव्ययता में है। इसे पर्दे पर उतारना बहुत चुनौतीपूर्ण है। ए फेयरवेल टू आर्म्स या फॉर हुम द बेल टोल्स जैसी बड़ी फिल्में बनी, गैरी कूपर, इंग्रिड बर्गमैन जैसे बड़े सितारे थे, लेकिन अक्सर इन फिल्मों ने कहानी के रोमांटिक पहलू पर ज्यादा जोर दिया और राजनीतिक या मनोवैज्ञानिक गहराई थोड़ी कम हो गई।
गैरी कूपर तो जैसे हेमिंग्वे हीरो का चेहरा ही बन गए थे।
हाँ, बन गए थे, लेकिन वो किरदार अक्सर किताबों के किरदारों से ज्यादा सरल और एकायामी लगते थे। शायद कुछ फिल्में जैसे द किलर्स 1946, जो उनकी एक लघु कहानी पर आधारित थी, वो उनके काम के मूड और निराशा के भाव को बेहतर तरीके से पकड़ पाई।
तो कुल मिलाकर देखें तो हेमिंग्वे एक पहेली की तरह हैं। एक तरफ उनकी क्रांतिकारी शैली है जिसने लेखन की दिशा बदल दी, दूसरी तरफ उनके विषय, उनका पुरुषत्व का चित्रण, उनका अपना व्यक्तिगत जीवन, ये सब आज भी बहस का मुद्दा है।
हाँ, और यही सवाल हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। आज के समय में जब हम नायकत्व की परिभाषा बदल रहे हैं, पुरुषत्व की धारणाओं पर सवाल उठा रहे हैं, कला और कलाकार के रिश्ते को नए सिरे से देख रहे हैं, तब हेमिंग्वे का वो दबाव में गरिमा वाला कोड हमारे लिए क्या मायने रखता है? क्या हम उनकी कला को उनके जीवन के विवादों से, उनकी शख्सियत की जटिलताओं से अलग करके देख सकते हैं, या ये दोनों हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे? शायद इसका कोई एक आसान जवाब नहीं है, और यही शायद अच्छे साहित्य की पहचान भी है। वो सवाल खड़े करता है, बने बनाए जवाब नहीं थमाता।
बिल्कुल सही कहा, और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, जिस पर वे आगे विचार कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।